अब आप देखिए आज इंसानों में किस किस्म के लोग हैं। अब आपकी इस आयत में जो नेकी के असल रूप बताई है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। दरख्त पूरे का पूरा दरख्त है, लेकिन आज हमें मुसलमानों में भी, नॉन मुस्लिम की तो बात ही नहीं हम कर सकते, असल तो बात मुसलमान की है, चार किस्म के लोग दिखते हैं। कौन से? नोट करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम किसी सोसाइटी के क्रिमिनल्स कहते हैं, चोर उचक्के डाकू, हम कहते हैं ये बड़े खराब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, जेब कुतरे कह लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, क्रिमिनल्स। आप कहते हैं ये बहुत बुरे लोग हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप करीब से देखें ना, इनमें भी कुछ खैर है। मसलन इनकी नेकियों का अपने पास क्या एक क्राइटेरियन है? ये कहते हैं हम चोर हैं, लेकिन अपने मोहल्ले में चोरी नहीं करते। कहते ना, चोर भी जाता है तो चार घर छोड़ के नहीं चोरी करता है, ठीक है। हद तक कि तवाइफें, प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरतें, आपका ख्याल है अपने जोम में वो नेकी नहीं करती? करती हैं। वो जाके पानी की सबीलें लगवा देती हैं, मुहर्रम में कहीं जाके चंदा दे दिया, कहीं जाके कोई कुआं खुदवा दिया, कुछ ना कुछ नेकी क्रिमिनल्स भी करते हैं, ठीक है। ये सबसे एक गिरा पड़ा तबका है सोसाइटी का, जिसको हम 3 में ना 13 में करते हैं। अक्सर देखिए सोशल वर्क के नाम पे ऐसे काम लोग करते हैं, यतीमों की बेवाओं की मदद भी करते हैं। तो उनके यहाँ नेकी क्या है कि अपने बुरे काम करते रहो, साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी करते रहो, ताकि हम भी नेक बन जाएं। वैसे उसके ऊपर चलिए, एक और तबका होता है सोसाइटी का, एक दूसरा तबका, और वो कौन सा है? जिनको हम शरीफ शुरफा कहते हैं, और कसरत इन लोगों की है दुनिया में। वो क्या करते हैं? नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ लो, फिल्म का वक्त आए तो फिल्म देख लो, दुख गम आए तो बैठ के सुपारे पढ़ लो, सुपारा सुपारा पढ़ के, बड़ी बड़ी तस्बीहों पे दाने पढ़ लो, ला इलाहा इल्ला अंता पढ़ लो, कुछ भी। लेकिन शादियों में, कॉन्सर्ट्स में भी बैठ जाओ और डीजेस को बुला लो। इनकी जिंदगी में दो स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, एक नेकियों की, एक गुनाहों की। मस्जिद में आते हैं तो नमाजी, घर में जाते हैं तो पापी, हज पे गए तो हाजी साहब, और शादी में गए तो फिर वो सेठ साहब, और बिजनेस में गए तो सूद है, और देना पड़े तो मस्जिदों में बड़े बड़े कालीन भी डलवा देते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं? दीन भी रखो, दुनिया भी रखो, ये वो लोग हैं। इनके यहाँ नेकी क्या है कि दीन के साथ दुनिया अलग, गुनाहों के साथ रखनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड स्टेज पे चलिए, किसी सोसाइटी का एक तीसरा गिरोह होता है, जिसको हम मजहबी गिरोह कहते हैं, दीनदार तबका। सारे नहीं, वो लोग जो नेकी की रूह से खाली हैं, उनकी बात करूंगी। उनके हाँ नेकी क्या है? रिचुअल्स। उनका हाल क्या है? छोटी छोटी बातों में इख्तलाफात, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे पे कुफर के फतवे, हाथ ऊपर नहीं बांधे, नीचे बांधे, काफिर, नमाज में रफुलदैन किया कि ना किया, बस गए, तरावियां 8 हैं या 20 हैं, झगड़े, मस्जिदें अलग हो गई। यानी जिसके बारे में आप कह ले कि मच्छरों को छानते हैं और ऊँटों को निगलते हैं, यानी दीनदार तबके में वो एक मखसूस तबका। सब दीनदार नहीं है वल्लाही, किसी दीनदार को आप इसमें ना रखिएगा, आप उनकी इज्जत करें, लेकिन एक खास दीनदार तबका ऐसा होता है जो सिर्फ रिचुअल्स के साथ दीन पे चलता है। लेकिन नमाजें 5 के 7 बजाय 7 पढ़ेंगे, लेकिन बीवी पे हाथ भी उठेगा, जुबान पे गालियां भी हैं, और इस तरह इखलाक बड़ा खराब है, बात बात पे लोगों को काफिर और जहन्नमी का, लानती का फतवा दे देंगे। आप कह लें कि ये वो गिरोह है कि जिनके अंदर जाहिर बहुत है, दाढ़ी की लंबाई भी नापेंगे, शलवार कितनी टखनों से ऊंची हो, कितनी ऊपर हो, इसको भी नापेंगे, लेकिन मामलात और इखलाकियात और लेन देन में कई गड़बड़े होंगी। चौथा एक और गिरोह है, जिसको आप कह सकते हैं क्रीम ऑफ दी सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग, हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, के जिनके पास दुनियावी इल्म की इंतहा है। इनके पास नेकी क्या है? ये कहते हैं झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, किसी को धोखा नहीं दो, किसी का हक नहीं मारो, इज्जत से बोलो, घर के मुलाजिम को भी आप कह के पुकारते हैं, टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं ये लोग, किसी को टाइम दे दे वादा खिलाफी नहीं करते, इंतहाई डिसेंट लोग आप कह लें। इंतहा से ज्यादा डिसेंट। सोशल वर्क के नाम पे रात तो दिन रात को भी काम करेंगे, कहीं पैसे जमा करने हैं, कहीं कुछ भी करना है करेंगे, लेकिन इनका मसला क्या है? इनसे कहें भाई उठो नमाज पढ़ ले, कहते हैं नमाजों से क्या होता है, हम भी तो काम ही कर रहे हैं, अल्लाह ने हमारी नमाजों से क्या करना है। बाज़ औक़ात देखा गया कैसे लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह की मखलूक को बहुत फ़ायदा देना चाह रहे होते हैं। अब आप बताइए, क्या ये चारों गिरोह इस्लाम का मुकम्मल दरख्त दिखा रहे हैं? सब पार्शली राइट हैं, लेकिन ओवरऑल सब रॉन्ग है। मैंने इस पे बात की भी है बहुत दफ़ा, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पे भी है, और दावा सीरीज़ में कि नेकी की हकीकत क्या है, दो सीरीज़ है, यही सारी बातें उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से मिल सकती हैं। कि नौ अंधे थे वो हाथी को देखने गए, और किसी का पेट पे हाथ पड़ा, किसी का दुम पे पड़ा, किसी का कानों पे पड़ा, फिर आके आपस में बातें कर रहे थे कि हाथी कैसा होता है। किसी ने कहा कि हाथी तो रस्सी की तरह है, किसी ने कहा ढोल की तरह है, किसी ने कहा पंख की तरह है, थाल की तरह है, क्योंकि जिसका जहाँ हाथ पड़ा उसको हाथी वैसा लगा। तो दे ऑल आर पार्शली राइट, लेकिन ओवरऑल गलत है। आज हम मुसलमानों का तकरीबन यही हाल है, जिसको दीन का जो हिस्सा समझ आया, और तबीयत भी होती है, मेलान होता है, किसी को नमाज पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को रोजे का सुन के जान निकल जाती है, किसी को रोजा छोड़ना मुश्किल लगता है, ठीक है, किसी को माल देना बहुत आसान है, हाथ खुला है, वो रोज चेक काटता है, वो अल्लाह के लिए भी एक दो चेक रोज दे दे, 2 दिन बाद दे दे, क्या बड़ी बात है। इस्लाम क्या चाहता है कि हम दीन का एक मुकम्मल नमूना बने, और ये आयत हमें इसी की तफसीर दे रही है कि लैसल बिर्र, पैसों में ना पड़ो, छोटी छोटी बातों में ना पड़ो, नेकी की असल हकीकत समझो। उलामा इकबाल का एक शेर है ना, कि उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगस ने, कुछ गिल ने, फूलों के नाम है, कि किसी एक फूल की एक खूबसूरती है, किसी की दूसरी है, दूसरे की, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। आज हम मुसलमानों का हाल यह, पूरा इस्लाम जब तक नहीं आता, ये रूह की तरह है, जैसे अभी दरख्त की हमने मिसाल देखी ना, एक आर्टिफिशियल दरख्त तो नीचे बहुत सारे बड़े होंगे, आप आके रिसेप्शन पे देखा करें, जब से हम आ रहे हैं वैसे का वैसा है, ना बड़ा हो रहा है, ना छोटा हो रहा है, ना कभी मुरझा रहा है, ना कुछ, लेकिन ये बाहर के दरख्तों के साथ आजकल क्या हो रहा है, इनके पत्ते क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा दरख्त हैं, ये आर्टिफिशियल दरख्त हैं। जब इस्लाम आर्टिफिशियल होता है ना लोगों का, तो ये जाहिर वाला इस्लाम, पंप एंड शो वाला इस्लाम, ग्लैमरी, खुशबुएं और छालियां और पान और नाच टाप, और जो जैसा दिल होता है वक्त के मुताबिक उसको सजा लेते हैं, फिर उठा के अंदर रख देते हैं। मेरा और आपका इस्लाम असली है कि नकली, आप अपने दिल की हालत से देखें, आपके इस्लाम पे कभी बहार आएगी? इतना नेकियां करने को दिल चाहता है कि रात को नींद ही नहीं आती, किस खौफ से कि नमाजी ना चली जाए, हज पे चले जाए, रमजान में देखिए हमारे दिल की हालत वही होती है। रमजान की मस्जिदें और आज की मस्जिदें, कभी सिर्फ इस सोच के साथ वेम्बले सेंट्रल मॉस्क में जाइएगा कि रमजान की रातों में सड़कों पे लोग खड़े होते हैं। मेरी आदत है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला जिंदगी भी दे और इस्तकामत दे, मेरे शौहर 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में ही जाते हैं, और जब आते हैं 2 सवाल पूछती हूँ, कौन सी आयतें पढ़ी इमाम साहब ने जो जहरी नमाज होती है, और दूसरा कितने लोग थे, 1 साहब, 2 साहब, 2.5 साहब, दैट्स इट। मैं तो कहती हूँ सारा साल मस्जिदों को आबाद सिर्फ जुम्मे के जुम्मे ही होता देखते हैं, ये नमाज नहीं, ये दीन नहीं है। इस्लाम बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप जिंदा चीज़ रखेंगे, आप एक दरख्त है ना, फ्रेश प्लांट, उसको इधर कहीं छोड़ दें और 10 दिन 15 दिन के लिए क्लासरूम बंद कर दें, जब आप 15 दिन बाद आके रूम खोलेंगे ना, आपको स्मेल आएगी, आके देखेंगे काई लगी हुई है, क्योंकि ये जिंदा दरख्त था, इसको इजहार चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। आर्टिफिशियल जितना मर्जी रख दें, वो 100 साल बाद भी वैसे ही आपको दिखेगा, अगर आपने उस पर कुछ खराबी नहीं की। इस्लाम के साथ जिंदगी है, हलचल, जगरदिश, इसीलिए कहा हीन अलबास, लड़ाई के वक्त में, मुश्किल में, तकलीफों में इस तरह चलो। आज हम मुसलमान इस तरीके से अपने इस्लाम की बातें करते हैं कि जाहरी रिचुअल पे लड़ते हैं, दीन की रो नहीं पता, मसलन नमाज के अंदर छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं, लेकिन नमाज सिखाती क्या है नहीं पता। एक लेक्चर है, अगर आपने रमज़ान में सुना हो, बल्कि अभी मैं स्कॉटलैंड गई थी तो हमने अलमीज़ान में इस मौजू पे बात की थी। आज माशाल्लाह हमारे पास 2 गेस्ट हैं बाहर से, एक जर्मनी से हैं और एक स्कॉटलैंड से, बाद में आप शेयर करना चाहें, और एक हमारी न्यू बॉर्न बहन है। तो आज की आयतें कितनी ज़्यादा आप देखिए कि हमें इस्लाम का एक मुकम्मल नमूना देती है ना, तो आप सोच सकते हैं कि जब हम इस्लाम के नाम पे सिर्फ रिचुअल पे रहते हैं तो भी बात नहीं, और सिर्फ रिचुअल छोड़ दें और सिर्फ उस पे आ जाएं कि भाई ये नहीं तो वो भी ठीक है। एक आखिरी चीज़ देख के फिर अगली आयत पे चलती हूँ। ये देखिएगा इस तस्वीर को अब दोबारा, इस्लाम का मुकम्मल दरख्त बन गया, ठीक है। कोई बंदा आए और इसके पत्ते उतार दे, कुछ कर दे, इसको छोड़िए, ये देखिए यहाँ से आप काट दें इस दरख्त को। अगर आप ऊपर से काटना शुरू कर रहे थे, नहीं, आप इबादत का ये दरख्त नीचे निकाल दें, कोई कुल्हाड़ा लाए और ये स्टेम इसका काट दे, क्या होगा? पूरा दरख्त गिर जाएगा ना। जो लोग नमाज रोज़ा नहीं करते और सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसका मैंने आखिर में आपको मिसाल दी, उनका हाल क्या है कि उन्होंने इस्लाम के दरख्त का तना गिरा दिया, तो दरख्त कैसे बनेगा? आपका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है तो बंदों की कहाँ बात मानेंगे आप? ये भी धोखा है। इस पे इंशाल्लाह बात आगे आयत के साथ कर देती हूँ तो आपको फायदा होगा कि हर अच्छा काम गुड डीड नहीं होता। लिखिए एक लफ्ज़ है गुड डीड, बिल मुकाबिल यानी उसके वर्सेस राइटियस डीड, समझ ही लें तो अच्छा है, इधर ही फिर ही फायदा होगा। हर अच्छा काम नेकी नहीं होता। मसलन आप देखिए कि यहाँ इस मिसाल को सामने रखें कि जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं वो कर तो अच्छा रहे हैं काम, लेकिन वो गुड डीड कब बनेगा? जब वो पहले खुद भी तो नमाज रोज़ा करेंगे। सिंपल सी बात है ना, अल्लाह का हक आप नहीं दे रहे। एक बंदे अल्लाह को मान ही नहीं रहा, नाम सिर्फ ले लेती हूँ, लोगों को गम बहुत है मदर टेरेसा का, मैं नहीं जानती उनको वो कौन थी कितना, बस लोगों से ही सुना है, इसलिए मेरे पर्सनल कोई व्यूज़ नहीं है इस मिसाल में। लोग कहते हैं ये बताइए कि मदर टेरेसा जन्नत में जाएगी कि नहीं? भाई क्यों? इसलिए कि वो कोढ़ के मरीजों की मदद करती थी, लेप्रसी की पेशेंट जो थे उनकी मदद करती थी, सिर्फ मिसाल के लिए। वल्लाही मैं, और हमें हुक्म भी नहीं कि किसी एक बंदे का नाम लेके जन्नती या जहन्नमी के, हत्ता के मुसलमान के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये मरहूम है और ये जन्नत में चला गया, इसलिए हमें मदर टीसा से कुछ सरोकार नहीं। मिसाल देती हूँ, एक बंदा आप देखिए नीचे, मन आमना बिल्ला आमना बिर रसूल, वो गायब है ना। अगर उस बंदे ने इकरार नहीं किया अल्लाह और रसूल को मानने का, ये पिछली स्लाइड पे चले जाएं तो आपको बात ज्यादा समझ आएगी, कि जो बंदा दिल में उसके अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। कुछ लोग नेकी इसलिए कर देते हैं, कहते हैं सुकून मिलता है, सुकून आता है, हर नेकी में सुकून नहीं है। आप जंग में जाते हैं कोई सुकून है? हिजरत करते हैं कोई सुकून है? चोटें लग रही हैं, चोटें पड़ती हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी क्या होती है कि हर वो चीज़ जिससे सुकून मिले, लोगों का फायदा है, वो गुड डीड है। नहीं, लोगों का फायदा हुआ। बस आप देखिए ना कि जिस बंदे ने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, रसूल से नहीं है, मरने के बाद उस नेकी पे जन्नत जहन्नम मिलनी, वो नहीं है, मिसिंग है, ये सारा हिस्सा मिसिंग है। इबादत उसकी नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर झाड़ है ना। तो आप बताइए कि जिस बंदे ने अपने रब से ताल्लुक नहीं जोड़ा, बंदों को फायदा दे रहा है, क्या उसको कल जन्नत मिलेगी? सिंपल सी बात है। इसलिए अल्लाह कहता है कि जो भी इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेके आएगा वो कबूल ही नहीं है। वजह क्या है कि पहले रब को तो मानो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद बात मुश्किल है, मुझे आपके चेहरों से लग रहा है कि बात मुश्किल है। देखिए कि नबियों का काम क्या होता है, कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि अल्लाह क्या है और ये भी बताया कि अल्लाह क्या नहीं है। एक बंदा अपने तखय्युल में अल्लाह ताला का कोई मुकाम बना ले, सिर्फ मिसाल देने के लिए, कि कोई कहता है कि मेरा ख्याल है कि ये जो बाहर दरख्त है ये खुदा है, मिसाल है, वो उसके आगे पूरी नमाज पढ़े, सजदा करे दरख्त को, नमाज फिर सूरह फर्ज भी पढ़े, सुन्नत रुकू क्याम सजदा, क्या आपका ख्याल है उसकी नमाज उसको फायदा देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसने सही मुकाम नहीं पहचाना, अल्लाह को नहीं माना, राइट? रिश्तों की तमीज़ होती है, आप जिस औरत को माँ समझते हैं उसी की खिदमत करते हैं ना, जिसके बारे में आपको यकीन है आपकी बीवी, आप उसी का ख्याल रखते हैं ना। तो पहली चीज़ खालिक को पहचानना है। नबियों के तरीकों को सामने रख के नेकी करेंगे ना तो वो राइटियस डीड है, बस अभी इतना ही समझ लें। और ये जो लफ्ज़ है ना लैसल बिर्रा, इसकी ज़्यादा तफसीर इंशाल्लाह चौथे पारे की पहली आयत में आएगी, लन तनालुल बिर्रा। अभी आपने लफ्ज़ी वजाहत में भी देखा ना, सुकून जंगल की मिसाल दी है, नेकी क्या है जो बंदे को सुकून देता है। कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो बहरी सफर का, हुए किसी को? शिप में गए, कश्तियों में तो बैठे ही होंगे, कितना खौफ आता है जब वो जहाज रात को हिलता है। मैंने एक रात गुजारी और नियत की थी आज के बाद नहीं आना, इतना खौफ आता है कि हम अंदर से निकल के बाहर आ गए थे कि मरना तो खुले आसमान के नीचे मरे। खौफ इस चीज का नहीं था जहाज हिलता है, जो अंदर हो रहा था उसका खौफ था, पब्स शराबें चलती हैं, म्यूजिक, लोगों ने उसको अपने लिए एक फन का जरिया बनाया और हमारी जान पे बन रही थी कि अल्लाह बनेगा कि इतनी मंजिलें ही सारी हमारे ऊपर ही गिरनी है अगर अल्लाह को गुस्सा आ गया। नाफरमानियां करते हैं हम अल्लाह की जगह पे जाके, नीचे जमीन नहीं ऊपर आसमान नहीं जाना है तो किधर जाना है। लेकिन आप महसूस करें कि पानी में बंदा हिलता है ना, उसका दिल डोलता है। जब मैंने उस शिप के बाद साहिले समंदर पे पाँव रखा, आज भी बता सकती हूँ उस वक्त मुझे इस जमीन की कदर आई कि ये जमीन क्या है। समझ आ रही है? बर लैसल बिर, या बर अगर आप उसको इमेजिन करें कि इंसान बेसकुना होता है, इत्मीनान नहीं होता उसकी जिंदगी में, जब वो इस्लाम के अंदर आता है तो उसको वो सुकून मिलता है जो तरी से खुश्की पे आता है। सिस्टर आप आइए, इधर आपको शेयरिंग करना चाह रहे थे, आ जाइए चंद मिनट के लिए। इस्लाम जो है ना, बंदे को सुकून देता है, चाहे जिस्म पे चोटें लगी हों, तकलीफें हो रही हो, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल बड़ा पुरसकून होता है। सो मुझे इनका मैसेज मिला था कि ये कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं। माशाल्लाह आज इनका तीसरा दिन है, तो प्लीज जो आप चाहें, मुझे पता नहीं आप क्या कहेंगी, लेकिन जो भी आप
मैं जो कहूँ
इस्लाम।
कि इस्लाम के अंदर वही कहूँगी, क्योंकि जो ये 3 4 दिनों में मैं महसूस कर रही हूँ, तो वो मैं आपके नाल जो शेयर करना चाहती कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती कि मैंने क्लास में जाना है, मैंने अल्लाह के बारे जानना है, मैं अल्लाह को मिलना है, मैं अल्लाह को देखना है। ऐसे बेचार मैं जनरल मैनेजर हूँ, मुझे पता नहीं मेरा काम कौन कर रहा है, मैं दुकान में भी नहीं गई जबकि मैं मिली हूँ। इतना अच्छा आपको गाइड कर रहा है, इतनी आसानी से अल्लाह के बारे में बता रहा है, तो एक एक चीज जो दिल को लगती है, मैं कहूँ कि मैं सलूट टू हर, कि हमें अल्लाह के नज़दीक कैसे लेके आ रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर समय जितना भी टाइम मिले इस क्लास को हम जरूर अटेंड करें, क्योंकि इनकी बातों में मुझे कोई लिखने में कुछ ही नहीं, मुझे तो मैं इसके मुंह वाल देखती रहूं, जो ये कह रही है वो कुरान मेरे अंदर दिल में लिखी जा रही है एक एक लफ्ज। तो वो मैं वहां बैठे थे, इन्होंने बोला अभी क्वाइट है, टेस्ट हो रहा है, तो पता नहीं मैं कितने पन्ने लिख ले उसी समय बैठी बैठी ने, कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर से, क्या हो रहा है मैं आपको बता। इन्होंने वो एक ही बात में कही कि हमें कुरान पर ईमान लेकर रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं उनमें अमल नहीं कर रहे। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। एक बार एक शिकारी था, उसके हाथ में तोता था। जब वो शिकार करने के लिए गुजरा तो उसने एक किसी नबी को, किसी पीर को देखा, तो उसने सोचा भाई बड़ा है कोई बंदा, चलो इसको मैं मत्था टेक लूँ, प्रणाम कर लूँ। समझते मैं जो कह रही हूँ?
जी जी
तो
समझती
मैं
हूँ।
मत्था टेक लूँ, तो उसने सोचा मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं है, तो क्या करूँ। उन्हें जो तोता था जो पिंजरे में था उसके आगे रख दिया। जब नबी तो पूरा अपने अल्लाह के में मगन था, जब उसने आंखें खोली तो देखा ये तोता कौन छोड़ गया जो पिंजरे में है। तो उन्होंने सोचा ये भी तो जानवर है, क्यों ना मैं इस पिंजरे से इसको आजाद कर दूँ। फिर नबी ने सोचा आजाद तो तब करूं अगर इसको कोई इल्म आ जाए, ये दोबारा ना पिंजरे में फंस जाए। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको तोते को बोलता कि मैं तुझे एक इल्म देता हूं, उसको अमल करना, तू फिर दोबारा जाल में नहीं फंसेगा। उन्होंने क्या दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, और तोता सीख गया। जब तो नबी को पता लगा ये तो सीख गया अभी नहीं फंसेगा, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना मत, उसका मतलब कि इसको इसने अमल कर लिया। तो पीर ने उसको छोड़ दिया, पिंजरे से निकाल दिया। तो तोता अपने जंगलों में जाके बोलता है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, जितने भी आले दुआले उसके और भी बहन भाई तोते और सब ये सीख गए। शिकारी दूसरे तीसरे दिन गया, जब शिकार करने लगा तो उसको तो नबी पर बड़ा गुस्सा आया, कहते यार ये क्या बात हुई मेरे साथ, मैंने तो उसके लिए फायदा सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो ये नबी ने तो मेरी रोजी रोटी में लात मारी, ये तो सारे तोते बोल रहे, तो अभी मेरा तो काम ही शिकार करना है, तो मैं अभी मेरा तो काम खत्म हो गया। तो वो क्या करता है शिकारी, तो वो नबी के पास ही जाता है, कहते आपने गलत किया, आपने सही नहीं किया। वो कहते मैंने क्या किया, कहते वो तो सारे तोते यही बोल रहे हैं। नबी बोलता तो जाके ये देख के रहा है कि वो अमल कितना करते हैं। उन्होंने फिर जाल बिछाया दाने डाले, सारे तोते दाने देख के फंस भी गए जाल में, फिर भी कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछा लेगा, फंसना मत। उसे पहले उसे शिकारी ने जाल खींचा, सारे तोते फंसे हुए भी बो रहे हैं। आज हम सब फंसे हुए हैं, अल्लाह के नाम पर लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। सिख कहता कि मेरा नानक बड़ा है, हिंदू कहता मेरा राम बड़ा है, कोई कहता मेरा कृष्ण बड़ा है। वो एक अल्लाह को, उसके नूर को देखा तो है ही नहीं, जाना तो है नहीं कि अल्लाह कितना बड़ा है। तो वो एक लाइट है, एक प्रकाश है, उसको उस नूर को हम कैसे उसका दीदार कर सकते हैं? क्योंकि देखो, एक एक खजूर है, ठीक है, आज मैं बहन जी की नकल कर दी, एक खजूर है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको चार लोगों ने खाना है तो लड़ाई है, ठीक है, क्योंकि किसी को होगा इसको कम मिलेगी, किसी को होगा इसमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अल्लाह तो किसी को बांटने की लोड़ नहीं, इसका भी एक ही अल्लाह, मेरा भी एक ही अल्लाह है, आपका भी एक अल्लाह जी। वो अल्लाह एक है, वो एक नूर है, वो हम सबको देने वाला है, फिर लड़ाई कहाँ है? लड़ाई एक चीज में है, हमें नबियों की बात अमल में नहीं लेकर आए, पढ़ने तक ही सीमित रखी है। जिस दिन अमल में लेके आए, वो ही बात आई, अमला बाजो आलमा, इल्म निकम्मे सारे। इल्म कहते नहीं वो अल्फाज की पहचान को, इल्म तो बता दे जो जिंदगी की शान को। इल्म जब आता है उसको कहना नहीं पड़ता कि तू कुरान को कितना मानती है, तू अल्लाह से मोहब्बत है। हमें उससे मोहब्बत हो जाती है जो अल्लाह के से मोहब्बत करता है।
लेकिन उससे
क्यों?
मोहब्बत वैसी करनी है जैसी
हाँ
अल्लाह ने सिखाई है।
बिल्कुल। ये जहां मैं आके ये महसूस कर रही है, जो बहन जी एक एक लफ्ज कह रहे हैं, वो एक एक चीज मेरे दिल में है। शायद तो मैं एक्साइट बहुत हूँ, या मैं नई हूँ, या मेरे लिए सब कुछ ही। जहाँ पर मैं आप लोगों को भी सल्यूट करती हूँ कि आप इतना कीमती सामान लेकर आए, तो इसको जरूर अमल में लेकर आए कि हमारे अल्लाह दाता ने, हमारे रब ने हमें इतना अच्छा धर्म ग्रंथ दिया हुआ है, हम लोगों में इस्लाम लेकर आए, उनको बताएं कि अल्लाह को पाके अल्लाह से मोहब्बत हो गई, तो हमें बंदों की खिदमत करनी भी आ जाएगी, फिर ये भी पता चल जाएगा मोहब्बत क्या है और नेकी क्या है।
अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर वसन जज़ा,
और थैंक यू,
शुक्रिया।
मैं
जी, जज़ाक,
बिल्कुल।
तो बहरहाल आप देखें कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके इजहार का तरीका भी आ जाता है ना। बाज़ दफ़ा हमें मोहब्बत बहुत होती है अल्लाह ताला से, उसके इजहार का तरीका नहीं आता। तो हमारी ये बहन बिल्कुल नई है ना, तो इन्होंने अल्लाह से भी मोहब्बत की है, तो इस दीन में इन्होंने क्या सीखना है अब, कि इस मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, यही सीखने का नाम कुरान की तालीम है और हदीस है। क्योंकि देखिए कि जितने भी फिरके भटके ना, याद रखें एक बात, जितने फिरके इस्लाम से हटे, ये पहले जुमला याद रखे कि जितने मुख्तलिफ दुनिया में मजहब और फिरके हैं, ये सब इस्लाम से भटके हैं। पहली बात लिख लें, इस्लाम सबसे पहले था, वहां से भटके। उसके भटकने की वजह क्या थी? कि उन्होंने बात बताने वाले को पूछना शुरू कर दिया। सीधी सी बात है, 100 बातों में एक बात है। तो प्यार अल्लाह का है, तरीका नबी से पूछना है, अल्लाह से बात करनी है, किससे करनी है, किसके लिए क्या करना है। तो ये रहमानियत क्या है? ये अल्लाह की हद से बड़ी भी मोहब्बत है। मना मना बिल्ला, अल्लाह पे ईमान आया, इतना आया कि वो कपड़े खाना पीना घरदारी सारी छोड़ी और चले गए जंगलों में, और बीवी बच्चों को नहीं पूजा। जोशी भंग, आप इस तरह के नाम सुनते हैं दीन के नाम पे, वो क्या है? वो अल्लाह की हद से बड़ी भी मोहब्बत है। तो चैनलाइज करना है, असल ये जुमला लिखिए, वरना हम सोचेंगे कि हमें बहुत कुछ समझ आ गया है। अल्लाह से मोहब्बत भी करनी है और उसका इजहार कैसे करना है, ये बात हमें नबी बताता है। और जब तक इल्म नहीं सीखेंगे, नबी की बात समझ नहीं आएगी। आज मुसलमानों में जितने सेक्ट्स हैं, फिरके हैं, आप नोट करके देखें, उसमें अपने उलमाए कराम और अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी हद से बड़ी हुई ताजीम, कि उसमें शिर्क तक आ गया, सजदे आ गए, उनकी तस्वीरों के आगे खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े होने लगे, इस तरह झुकने लगे, कभी पाँव को हाथ लगाने लगे। तो ये हद से बड़ी हुई चीज़ बंदे को बाज़ दफ़ा फिर दीन से निकाल देती है। ठीक है जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी जी जी
सुन रहे हैं, हम
आमीन सुमन। असल बात ये देखिए कि अनदमु तौबा, हम सबको भी ये मुकाम मिल सकता है जो ही हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं ना, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। बस दफ़ा हम चीज़ों में खो जाते हैं जाहिर में और उसके रिचुअल्स को समझ नहीं पाते। तो इस्लाम बिल्कुल, मुझे इस वक्त ये फील हो रहा है कि एक गाड़ी है इस्लाम की और आपने वो चलानी है। सिर्फ सामने ही नहीं नज़र रखनी, बल्कि आपने ब्रेक को भी देखना है, आपने गियर को भी बदलना है, पीछे भी देखना है, सीधी लेन में और टेढ़ी पे तो नहीं। यही सारी बात है अहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सारी ज़िंदगी आप अपने आप को चेक करते रहे और उसका मियार आपके वजह इल्म है। बगैर इल्म के जिन लोगों ने अमल करने शुरू कर दिए वो कोई कब्रों के ऊपर जाके बैठा हुआ है। आप जाके पूछें किसी कब्र पे जो बैठा सर धुन रहा है, भंग पी रहा है, चरस पी रहा है, वो कहेगा अल्लाह हू अल्लाह हू, अल्लाह से प्यार अल्लाह हू। कोई किसी बुजुर्ग के नाम पे कुछ कर रहा है, आप कहेगा अल्लाह से प्यार करता है। तो अल्लाह से प्यार का दावा बहुत लोग करते हैं लेकिन अल्लाह खुश किन तरीकों से होता है वो नहीं पढ़ते, बगैर इल्म के अमल करते हैं। जी आप साइमा, आपने बीच का सबक मिस किया है। जी बैठिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। देखिए कि इनका सवाल यह है कि क्या जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे या दूसरों में भी कोई जाएगा। मैं वही जुमला जो उस दिन भी शायद मैंने 4-6 दफ़ा बोला होगा फिर बोल देती हूँ कि जन्नत में, गौर से समझिएगा, जन्नत में मुसलमान भी जाएंगे, यहूद भी जाएंगे, नसारा भी जाएंगे, और अपने अपने दौर में नबी की तालीमात पे अमल करने वाले जाएंगे। कब तक? जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहूर नहीं हुआ था। बात वाज़े, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए, आपने फरमाया जिन कानों ने सुन लिया और जिन आंखों ने देख लिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गया, फिर वो अगर मुझ पर ईमान नहीं लाया तो उसका ठिकाना आ गया। क्यों? क्योंकि उन नबियों की और उन किताबों की तालीमात का हिस्सा यही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। आगे आयतें आएंगी आपको इन्हीं मजहब की किताबों में, आज जो नबी सल्लम की आमद की खबरें और काल की राम और कुछ इस तरह के नाम और अवतार जो हैं इनकी किताबों के रेफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे तौरात और इंजील के रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो हम सबको बस आज आखिर में इस बात पे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें ईमान की आजमाइश में नहीं डाला कि आप ईमान कबूल करें, अपना रास्ता बदलें। ये किस्मत वालों को अल्लाह मौका देता है, और साथ ही साथ ये दुआ करनी है कि अब अल्लाह ताला आप हमें इस पे जमाए भी रखें। ठीक है,
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون